क्लेश कितने, क्लेश कितने प्रकार, क्लेश का क्या मतलब है? वो कॉपी देख करके बोलिए, देख करके बोलना ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये तो क्लेश अग्नि है ना। क्लेश का अर्थ हम पूछ रहे हैं, क्लेश मतलब, क्लेश किसको कहते हैं? दूसरा कोई बोले क्लेश का क्या अर्थ है? हाँ, माया पूर्वासी ये कभी सुने थे कि नहीं क्लास में? काहे को सुने? उसको धारण भी कीजिए, पॉट से कॉपी खोल करके बोल देना चाहिए। अभी पाप का चक्कर बाकी रह गया। छ को तीन भक्ति से संबंधित किया गया है। तीन भक्ति का नाम बतला सकते हैं? श्रीनिवास, हाँ, भक्ति भाव प्रेम जी, ठीक ठीक है। ये साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ठीक 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 है। नहीं ठीक हुआ आए तो उसको शुभ को करो। तो उसके लिए हम केवल मशीन के प्रतीक्षा में हैं। तो शुभ उसको इसी समय से आप लोग देखते चलेंगे तो परीक्षा के लिए अलग से नहीं कुछ मेहनत करना पड़ेगा। इस समय नहीं देखेंगे तो तीन दिन में कितना देख पाएंगे? कागज सेफ था तो कागज तो लाए नहीं। लिखने में टाइम लगेगा ना। और फिर से कौन बोल सकता है छह भक्ति, छह गुण भक्ति के एक सांस में? हाँ बोलिए दयालु। हम तो छ में से एक दो सुने, जोर से बोलिए कि सब सुनाई दे। कुछ सुनाई नहीं दिया। एक कॉपी सेंड कर दीजिए श्रीनिवास को। तो पहला है क्लेशग्नि और दूसरा शुभदा। क्या अर्थ हुआ इसका? शुभदा मतलब शुभ प्रदान करने वाली, क्लेश खत्म करने वाली है और शुभ प्रदान करने वाली। तो जैसे क्लेश को परिभाषित किया गया तो वैसे ही शुभ को भी परिभाषित किया गया है। तो शुभ किसको कहते हैं? कौन बोलेगा? आए। हाँ ये तो शुभ का अर्थ हुआ ना, प्रश्न पहले सुनना चाहिए, प्रश्न को समझना चाहिए। शुभता का अर्थ नहीं मैं बोल कर पूछ रहा हूँ, किस चीज का अर्थ पूछ रहा हूँ, शुभ का। शुभ किसको कहते हैं? हाँ बोलिए मायापुरवासी आए। ठीक ठीक ठीक, लेकिन कोई भी पढ़ करके नहीं आए हैं? पढ़ करके आए हैं? शुभ है, शुभ पढ़े हैं? पढ़ करके नहीं आए हैं और आए। हाँ एक शुभ है, विश्व भर के लोगों के लिए कल्याणकारी। ये है संभावना ठीक होने की? तार की समस्या, तो तार आने पर दूर होगा ना। तो कीर्तन हो रहा था उसी समय सब करना चाहिए था ना। आए क्लेश कितना है, कितना गिनती किया गया क्लेश का? तीन। कौन कौन? तो वैसे ही शुभ चार। कितना? चार। एक श्लोक बोलने का प्रयास कीजिए। अच्छा आपके पास है श्लोक तो उसी का उच्चारण कीजिए। शुभानि प्रीडनम सर्व जगता मनुरक्तता, सद्गुणः सुखमित्यादीनि आख्यातानि मनीषी भी। अब कोई बतला सकता है शुभ का क्या अर्थ हुआ? मुरारी बोलो। शुभ चार, तो चार की गिनती कीजिए क्या क्या है। जवाब आ गया तो ये पहले आना चाहिए। फिर से श्लोक बोलिए। शुभानि प्रीडनम सर्व जगताम अनुरक्तता, सद्गुणा सुखमित्यादिनी आख्यातानि मनीषी भी। देखिए जैसे पाप सीधे जो ग्रंथ में लिखा गया है उसको बोलना है। अब ऐसे मत करने लगे कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। तो जैसे पाप को सीधे बोल रहे हैं, नहीं क्लेश को, पापम तद्बीजम अविद्या, तो उसी प्रकार शुभ चार है। कौन कौन देख करके यहां से बोलिए। शुभदा का क्या अर्थ हुआ? साधन भक्ति करने से वो भक्ति क्या प्रदान करेगी? सभी प्राणियों की प्रसन्नता, सारे जगत की अनुरक्ति, सद्गुण और सुख। कितना हुआ? अच्छा, अब सुख का भी तीन भेद है। सुख है के भी तीन भेद है। कौन इसको पढ़ सकता है? एक एक पढ़िए। वैषयिक, ब्राह्म और ऐश्वर्य। वैषयिक का क्या अर्थ होगा? विषय से संबंधित जो है उसको वैषयिक कहेंगे, और ब्रह्म से जो संबंधित है वो ब्राह्म है, और ईश्वर से जो संबंधित हुआ ऐश्वर्य हुआ। तब शुभता का अर्थ समझ में आ रहा है? शुभ प्रदान करने वाली। शुभ का क्या अर्थ है? सभी प्राणियों की प्रसन्नता, सारे जगत की अनुरक्ति, सद्गुण और सुख। ये अटेंडेंस के समय ही आना चाहिए था, सब लिख लिए होते हैं। तब अब कुछ कठिनाई भी लग रही है। भक्ति का प्रभाव है कि शुभ प्रदान करेगी। शुभ में चार चीज का गिनती कर रहे हैं, तो एक है कि सभी प्राणियों की प्रसन्नता। भक्ति हम करेंगे, एक व्यक्ति करेगा, उसका प्रभाव क्या होगा कि सब लोग प्रसन्न होंगे। वो प्रसन्नता अलग बात है, वो केवल प्रसन्न ही नहीं होंगे। व्यक्ति भक्ति करने वाले से प्रेम भी करेगा। अनुराग का ही संज्ञा, अनुराग और अनुरक्ति एक ही है, वो प्रेम करेगा। और भक्ति करने वाले में सब सद्गुण आ जाएगा, और भक्ति करने वाले को सुख की भी प्राप्ति होगी। सुख चाहे वह विषय का सुख है, खाने पीने पहनने ओढ़ने स्पर्श सुख, या ब्रह्म से ब्रह्मानंद का सुख है, या भगवान के अनुभूति का सुख। तो यह शुभ का मतलब है। इसके लिए कई एक प्रमाण उद्धृत किया गया है। ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्जयन्ति जन्तवस्तत्र जंगमस्थावरा अपि। जो व्यक्ति भगवान की अर्चना करता है तो उससे सारा संसार तृप्त हो जाता है, और जो स्थावर या जंगम प्राणी है वे भी प्रेम करने लगते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं कि जंगम प्राणी मनुष्य के अतिरिक्त जो दूसरे प्राणी हैं वे भी भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्ति से आकृष्ट होते हैं? जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो जंगल के सब प्राणी प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु से प्रेम कर रहे थे। वे नजदीक आकर के चैतन्य महाप्रभु के अंग को सूंघ रहे थे, चाट रहे थे, और वे भी आनंद में कीर्तन कर रहे थे। तो दो गुण के लिए एक ही श्लोक उद्धृत किया गया, इसमें दोनों गुण का प्रमाण दिया गया। सब लोग प्रेम करते हैं और सब लोग प्रसन्नता अनुभव करते हैं। यह भक्ति का प्रभाव है। यहां तक जो लोग तटस्थ हैं या ईर्ष्या कर रहे हैं वे भी भक्ति के प्रभाव से प्रेम करने लगते हैं। श्रीमद् भागवतम से कोई उदाहरण दे सकते हैं, ध्रुव महाराज आप वर्णन पढ़ेंगे, जब वे भगवान का दर्शन करके लौटे तो उत्तान पाद उनके खूब अच्छी अगवानी की है, पहले से ही हाथी लेकर के तैयार थे। ध्रुव महाराज हाथी पर बैठ करके आए। एक समय था कि वे सिंहासन पर चढ़ना चाहते थे, गोद पर चढ़ना चाहते थे, बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे नाभ्यनंदत उसका समर्थन नहीं किए, कोई लिफ्ट नहीं दिए। यहाँ तक कि उनकी जो सौतेली माँ थी वह ध्रुव को आशीर्वाद दे रही। अब इस व्यवहार पर कोई प्रश्न कर सकता है कि यह क्या हो रहा है, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते नहीं, मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि यही होता है, जो जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके तरफ सब लोग झुक जाते हैं स्वाभाविक रूप से। जैसे पानी का स्वभाव है कि नीचे के तरफ बहता है, तो उसी प्रकार जिस व्यक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वाभाविक सब लोग उसके तरफ झुक जाते हैं। तो साधन भक्ति का एक गुण है कि शुभ प्रदान करने वाली। तो शुभ में चार भाग किया गया है, चार की गिनती की गई है। तो दो है, सभी प्राणियों की प्रसन्नता और सारे संसार की अनुरक्ति। अब लोग प्रेम करने लगते हैं भक्तों से, इसका अनुभव है किसी को? भक्त लोग चलते हैं, कोई माला पहना देता है, दक्षिणा देने लगता है। अभी साधन भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये तो संशय है, साधन भक्ति के स्तर पर पहुंचे नहीं है अभी तो भाई ड्रामा ही तो कर रहे हैं। ढोंग का भी ये प्रभाव होता है ना, लोग बस रुकवा करके और बड़ा बड़ा माला ला करके पहना देते हैं। और सद्गुण, भक्ति करने से स्वाभाविक ही सद्गुण आ जाते हैं, ये भक्ति के प्रभाव से। आप स्वतंत्र रूप से सब सद्गुण अर्जित कीजिए, सारे सद्गुण मिल करके भक्ति नहीं उत्पन्न कर सकते, भक्ति नहीं प्रदान कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसमें सद्गुण स्वतः आ जाता है। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं, देखा जाता है कि कई एक लोग हैं खूब अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई किए हैं, लेकिन उनके जीवन पर विचार कीजिए, मांस मछली खाते हैं, रात को देर तक जगते हैं, क्या क्या कुकर्म करते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सदस्य है, हो सकता है कि वो निरक्षर व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी उसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, वो मांस भक्षण नहीं करता है, जुआ नहीं खेलता, शराब नहीं पीता है, व्यभिचार में नहीं लिप्त है। वो भक्ति करने से स्वतः सद्गुण आ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचन सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा, कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, जिस व्यक्ति में भगवान की भक्ति है वो सर्वै गुण ही समासते सुरा, सारे गुणों के साथ देवता उसके अंदर आकर के डेरा गिरा देते हैं, समासते आ जाते हैं। और हराव भक्त से कुतो महद गुणा मनोरथे न सति धावतो वही, और जो भगवान का अभक्त है और विषय में उसका मन धावित है और उसको कहाँ से सद्गुण आ सकते हैं। और भक्ति का एक विशेषता है कि सद्गुण प्रदान कर देती, और चौथा शुभ है सुख। और सुख का तीन भाग, विषय का सुख, जो भक्ति करता है तो विषय का सुख उसे स्वतः प्राप्त हो जाता है। अभी एक प्रश्न होगा कि भक्ति कर रहा है तो सुख कहां से आ जाता है, तो सिद्धांत समझना चाहिए कि भक्ति करने वाले की सेवा में सिद्धियां स्वतः आ जाती है। अब सिद्धियां आ गई तो उसके प्रभाव से उसको कोई भी सुख की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धियां, कितनी सिद्धियां होती हैं? आठ, आठ ही होती हैं, है? भागवतम में कितने सिद्धियों का उल्लेख है? 18 है, 8 मुख्य है। सिद्धियों के विषय में श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंध के 15वें अध्याय में प्रारंभ में ही वर्णन है, तो 8 सिद्धियां हैं मुख्य। मत प्रधान, ये सिद्धियां तो मुख्य रूप से भगवान का आश्रय लेती हैं, लेकिन उसका कुछ अंश जो साधन भक्ति का संपादन करता है, अभ्यास करता है, उसकी सेवा में भी उपस्थित हो जाती है। ये 8 सिद्धि क्या क्या है बाबा? 1-2 सिद्धि का नाम बोलिए। तो अरिमा का क्या अर्थ होता है? कितना छोटा है? जो पत्थर में भी प्रवेश हो जाए, अणिमा इतना छोटा हो जाता है कि पत्थर में भी वो प्रविष्ट हो सकता है। वे पत्थर में कैसे प्रविष्ट हो जाए, क्योंकि पत्थर में भी छेद है। ये तो जो साइंस वाले हैं वो अच्छा ढंग से इसको समझ सकते हैं, और पत्थर में भी छिद्र है लेकिन दिख नहीं रहा। ये चमड़ा में छिद्र है कि नहीं है? ना, दिख नहीं रहा। छिद्र है तभी उधर से पानी निकल करके आ जाता है, गर्मी में पानी निकल करके आता है ना, लेकिन ऐसे तो लग रहा है कि एकदम प्लेन है। तो पत्थर में भी बहुत सूक्ष्म छिद्र है, तो अरिमा सिद्धि प्राप्त होने पर व्यक्ति इतना सूक्ष्म हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि पत्थर में भी प्रवेश कर जाएगा, तो अरिमा। और इसके विपरीत एक सिद्धि है, उसको महिमा। ये बाबा गरिमा बोल रहे हैं वो चलेगा। महिमा का अर्थ है बड़ा हो जाना, व्यक्ति इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे संसार को कवर कर लेगा, आच्छादित कर देगा। और एक सिद्धि है, उसको कहते हैं लघिमा। लघिमा का अर्थ कौन बतलाएगा? रक्षक माधव, लघिमा का क्या अर्थ है? अणिमा का अर्थ है छोटा हो जाना, और लघिमा का अर्थ है हल्का हो जाना। कोई कोई चीज छोटा होता है लेकिन बहुत हल्का नहीं होता है। तो अणिमा साइज में छोटा होना है, और लघिमा का अर्थ है वजन के हिसाब से एकदम हल्का हो जाना। इतना हल्का व्यक्ति हो सकता है कि सूर्य के किरण का अवलंबन करके सूर्य तक पहुंच सकता है। ऊपर चढ़ने में भारी और हल्का का बहुत अंतर है ना। वृक्ष पर चढ़ना होता है तो हल्का शरीर वाले चढ़ जाते हैं, दातुन तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं। मोटे शरीर वाले तो भारी शरीर वाले नहीं चढ़ पाते। तो लघिमा सिद्धि का अर्थ है कि इतना व्यक्ति हल्का हो जाता है कि सूर्य के किरण का अवलंबन करके, वो किरण के सहारे ही सूर्य तक चढ़ सकता है। तीन सिद्धि ये शरीर की है, मूर्ति की है, और सिद्धि क्या है? आए, एक सिद्धि है इसीता। ठीक, तो इसीता का क्या अर्थ है? इसीता ईश्वर का गुण आ जाए थोड़े अंश में तो उसको ईशिता कहेंगे। तो माया को नियंत्रित कर रहे हैं भगवान, लेकिन ईशिता शक्ति आने पर वो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति भी कुछ अंश में माया को नियंत्रित करने लगता है। तो माया का कार्य है सृष्टि करना और प्रलय करना। वो ईशिता शक्ति आने पर वो शक्ति को प्रेरित करता है माया को, और माया के जो अंश हैं अविद्या इत्यादि उसको वह प्रेरित करने लगता है। मतलब छोटे स्तर पर वह सृष्टि और नाश कर सकता है। तो चार हुआ, पांचवा नाम बोलिए, बसीता। लेकिन उसके पहले एक और सिद्धि, प्राप्ति। प्राप्ति, प्राप्ति इंद्रिय, इसको कौन बतला सकता है? प्राप्ति सिद्धि क्या होता है? उंगली को चंद्रमा से छू सकता है। तो श्रीमद् भागवतम क्या, प्राप्ति इंद्रिय, वो इंद्रिय से प्राप्त करता है। तो अपने इंद्रिय से या दूसरे के इंद्रिय से, यह नहीं लिखा गया, तो दोनों लागू होगा। अपने इंद्रिय से कोई भी वस्तु प्राप्त कर लेगा, और ऐसा देखा जाता है, ऐसे सिद्ध लोग आज भी हैं। इलाहाबाद कुंभ में सब आते हैं, घटना लोग बतलाते हैं कि साधुओं के, जोगियों की एक टोली जा रही थी कुंभ स्नान के लिए संगम पर, और ऊपर छत पर कुछ संत लोग फल काट रहे थे, ऊपर थे, लेकिन एक जोगी ले लिया उसको। तो अपने इंद्रिय से कहीं दूर के भी भोग को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका दूसरा फेज है कि दूसरे के इंद्रिय से भी भोग प्राप्त कर सकते हैं। ये प्राप्ति सिद्धि है तो रसिक प्रिय अपने मुंह में भोजन डालेगा और दूसरा उसको ले लेगा, समझ रहे हैं। वे तादात्म कर लेते हैं इंद्रियाधिष्ठात्री देवता से। वास्तव में इंद्रियों का जो भी व्यापार है तो वो तो अधिष्ठात्री देवता कर रहे हैं, अब उन्हीं को मैनेज कर लेता है प्राप्ति सिद्धि वाला। वो कोई अपने इंद्रिय से भोग डालेगा अपने लिए, लेकिन वो अपने आप खींच लेगा, समझ रहे हैं। प्राप्ति इंद्रिय ही, अपने इंद्रिय से या दूसरे के इंद्रिय से वो भोग ग्रहण कर सकता है, तो इसको कहा जाएगा प्राप्ति सिद्धि। और कितना हुआ, पांच, छठा आए प्राकाम्य, या उसी को कहीं कहीं प्राकाश लिखा गया है। तो प्रकाश सिद्धि का अर्थ है कि वह श्रुत लोक मतलब परलोक का जो भोग है उसको भी देख लेगा, या इस संसार का जो भोग है भले वो भूमि के भीतर है या किसी गुफा में है। भू विवरेषु श्रीमद् भागवतम का अर्थ है वो पृथ्वी के नीचे है या बिल में है, लेकिन उसको पता चल जाएगा। दूसरे लोक में कोई भोग है उसको भी उसको पता चल जाएगा, इस संसार में भोग भले हो पृथ्वी से ढका हुआ या किसी गुफा में है किसी बिल में है, तो उसको भी प्राप्त कर ले, इस सिद्धि को प्रकाश या प्रकाम्य कहते हैं। दो बाकी रह गया, बसीता। बसिता सिद्धि का अर्थ है कि एकदम भोग के बीच में रह करके भी एकदम अप्रभावित रहेगा। हम लोगों की स्थिति नहीं है, वो मिठाई देखते ही, अरे देखने की बात तो दूर है, नाम सुनते ही पानी आने लगता है मुंह में, या दूसरा भी भोग का वस्तु है, स्त्री इत्यादि का दर्शन करते उनके बीच में रहते ही जाते ही मन तो कम से कम प्रभावित हो जाता है। लेकिन बसिता सिद्धि का अर्थ है कि भोग में रहते हुए और पूर्ण अपने ऊपर नियंत्रण हो, थोड़ा भी प्रभावित न हो व्यक्ति, इसको कहा जाएगा बसिता सिद्धि। और एक है कामावसायिता। कामावसायिता सिद्धि का अर्थ है कि जो जितना भोग करना चाहे उतना भोग कर सकता है। अरे साधारण आदमी है, उसके मन में इच्छा भी हो कि हम खूब मिठाई खाएं, और कितना खाएगा। कितने लोग तो दो तीन में ही नाना करने लगते हैं। सत्यनारायण है तो 18-20 तक जा सकता है एक बार हम लोग जयपुर से आ रहे थे, जयपुर से या विजयनगर से लगता है कि, और पलवल के एक डॉक्टर हैं, वो अपने प्रसाद रख दिए थे, हम लोग पाने लगे। अब मिठाई एक एक व्यक्ति लिया, कोई ले नहीं रहा था, वो बहुत देना चाहते थे, दो तीन डब्बा लाए थे। सत्यनारायण को दो तीन दिए तो कहा कि रहने दीजिए, तो अपने और लीजिए। सब इसके बाद चालू के हाँ तो दे दीजिए, तीन चार दे दीजिए फिर हाँ तो चार पांच दे दीजिए सत्यनारायण को तो अधिकांश लोग जानते हैं ना, मृदंग बजाने में थकता नहीं है, लेकिन जब तक उसको भोजन नहीं कराए, बिना भोजन कराए मृदंग पकड़ा दिए तो मृदंग फूट करके ही आएगा एक बार जगन्नाथपुरी में पूरा कई एक भक्त लोग थे, वहाँ कोई मरवाड़ी भाषा है तो भरपेट भोजन कराते। बॉम्बे के एक भक्त अमृत कृष्ण महाराज का सेक्रेटरी था तो ले गया, सब लोग खा रहे थे तो सत्यनारायण 18-10-12 रोटी खाए, इसके बाद आके अच्छा भात दीजिए। भात देने के बाद फिर अच्छा थोड़ा रोटी ला दीजिए, और फिर 10-12 रोटी लिया। तो अमृत कृष्ण को लगा कि हो सकता है कि होटल वाला है एक्स्ट्रा बिल लेगा, उसका तो था कि भर पेट खाना है, तो जा करके पूछे, नहीं नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं है, एकाध लोग ऐसे खाने वाले हैं, और कौन खाने वाला है। लेकिन कामावसायिता सिद्धि प्राप्त होने पर अब व्यक्ति एक डब्बा नहीं, वो भारती के स्टॉक खत्म कर सकता है, और केवल भारती का ही नहीं वृंदावन का जितना मिठाई है सब खा सकता है, और वृंदावन का ही नहीं अने वो जितना मिठाई खाना चाहे उतना खा सकता है, जितना भोग करना चाहे उतना भोग कर सकता है, और इसको कहा जाता है कामावसायिता। और जिसको ऐसी ऐसी सिद्धि है तो अब उसके लिए कौन भोग दुर्लभ रह जाएगा। लेकिन भक्त लोग प्रायः इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन सिद्धांत समझना चाहिए कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो भोग की कैसे प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अब सब सिद्धियां उसकी सेवा में आ जाती हैं। आप देख रहे हैं ना, बैंक आपको कार्ड इशू कर देता है, पता नहीं कौन कार्ड, हम लोग तो कभी यूज किए नहीं, लेकिन उसी कार्ड से पेट्रोल के दुकान पर पेट्रोल भी, और उधर मॉल में गए तो कपड़ा भी ले लिए, जूता भी ले लिए, कार्ड एक ही है ना, वो कार्ड सब सुविधा प्रदान कर रहा है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति करता है तो सिद्धियां उसके सेवा में स्वतः ही आ जाती है। अब सिद्धियां आ जाती हैं इसलिए उसको कोई भी भोग सुलभ है, और इसको वैसायिक सुख कहते हैं। भक्ति के प्रभाव से, भक्ति का गुण है कि सुख प्रदान करती, चाहे विषय का सुख हो या ब्रह्म का सुख हो। ब्रह्म का सुख विषय के सुख से बहुत उत्कृष्ट है, तो भक्त के लिए ब्रह्म का भी सुख सुलभ होता है, लेकिन ब्रह्म के सुख से भी अतिशय उत्कृष्ट है भगवान के अनुभूति का सुख, ईश्वर के अनुभूति का सुख, तो वह भी सुख भक्त को सुलभ है। अब चूंकि भगवान के अनुभूति के सुख से वो इतना तृप्त होता है कि प्रायः प्रायः ब्रह्म सुख को या विषय के सुख को स्वीकार नहीं करता, लेकिन भक्ति के विशेषता है कि सब सुख सुलभ है। और इसको कह रहे हैं भक्ति का एक गुण है शुभदा, शुभ का अर्थ है चार, सभी प्राणियों की प्रसन्नता, सारे जगत के अनुरक्ति, सद्गुण और सुख। सुख के लिए तीन भाग, वैसायिक, ब्राह्म और ऐश्वर। तब श्रीनिवास गणित तो चलेगा ही, लेकिन अंक गणित ही है ना, ये जोड़ घटाव इतना गिनती तो कोई भी जानता है ना, ये गणित कर देने से सुविधा होती है, स्पष्ट बातें समझ में आ जाती है। इनको आश्चर्य है कि भक्ति रसामृत सिंधु के क्लास में गणित 2-4 ये क्या पढ़ाई हो रही है। अब हमको तो ज्ञान नहीं है, इस समय तो लोग फोटो में, रिकॉर्डिंग में, क्या क्या में भी डिजिटल पसंद कर रहे हैं, तो डिजिट एक अंक ही होता है ना, इसी से बना है ना, डिजिटल रिकॉर्डिंग, तो डिजिटल कैमरा, तो क्लास में भी डिजिटल क्लास हो गया तो क्या कठिनाई है। इस साधन भक्ति के दो गुण कौन कौन, क्लेशग्नि और सुभदा। लेकिन भक्ति भाव स्तर पर पहुंची दो गुण और उभरेंगे, कौन कौन, ये भाव भक्ति के दो गुण हैं। पहला गुण है कि मोक्ष में हे बुद्धि हो जाती है। सीधा सीधा अनुवाद कीजिए तो है कि मोक्ष को छोटा बना देने वाली, कृत मतलब करने वाली, मोक्ष लघुता कृत, जो मोक्ष को छोटा बना दे। अरे मोक्ष को कैसे छोटा बना देगी, ये प्रेशर है, दबा करके कंडेंस कर देगी। मोक्ष को छोटा कैसे बना देती है, हाँ बोलिए। हाँ, भक्ति का सुख इतना बड़ा लगने लगता है कि मोक्ष का स्वतः ही फीका हो जाता है, छोटा हो जाता है, कंपेरिजन करने से छोटा हो जाता है। हम सुनते हैं कि एक बार सिविल सर्विसेज के लिए इंटरव्यू कोई ले रहा था, बोर्ड पर एक लाइन था और कैंडिडेट से कहा कि इस लाइन को बिना मिटाए हुए छोटा कर दीजिए, इसको टच नहीं करना है और इसको छोटा कर दीजिए। तो कैंडिडेट भी बहुत इंटेलिजेंट था, पेंसिल उठाया और उसके ऊपर एक बड़ा लाइन खींच दिया, तो उसके कंपेरिजन में छोटा हो गया ना। उसी तरह भक्ति के सुख के आगे मोक्ष का सुख छोटा हो जाता। कई एक लोग हैं कि ब्रह्म के सुख में, ब्रह्म सुख और मोक्ष सुख एक ही अर्थ में होता, निमग्न थे, लेकिन जब ही भक्ति का संपर्क हुआ उसका त्याग कर दिया। जनक जी ब्रह्मानंद में मग्न रहते थे, लेकिन जब भगवान राम का दर्शन किए और उनको इतना सुख का अनुभव होने लगा कि ब्रह्म सुख को मन ने त्याग दिया। एक भक्त लिखे, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब भगवान राम के दर्शन से इतना सुख मिल रहा था कि ब्रह्म सुख का मन त्याग कर दिया। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, गृहित चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। सुखदेव गोस्वामी, वो वेदव्यास जी बहुत आशा से जन्म देना चाहते थे श्रीमद् भागवतम पढ़ाने के लिए, लेकिन गर्भ से ही वे ब्रह्म सुख में निमग्न थे, वे मुक्तावस्था में थे, बल्कि गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे कि बाहर तो माया का प्रभाव है, वे वहां अपने को मुक्त समझ रहे थे, मोक्ष के सुख में थे, ब्रह्म के अनुभूति में निमग्न थे, बाहर नहीं आना चाहते थे कि बाहर माया का प्रभाव हो सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण उनको आश्वासन दिए कि ना, बाहर भी प्रभाव नहीं होगा। तो बाहर तो आ गए लेकिन अपने आनंद में वो निमग्न थे और गृह का त्याग कर दिए, वन के तरफ जाने लगे। वेदव्यास देव तो आशा लगाए थे कि भागवत पढ़ाना है, वे पुकार रहे थे, लेकिन वे उनकी बात नहीं सुने। लेकिन जेम ही वे श्रीमद् भागवतम के दो श्लोक सुने, भगवान के गुण को सुने, रूप को सुने, तो इतना आकृष्ट हो गए कि अपने मुंह से कह रहे हैं कि परनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। वे एकदम निष्ठ थे, नैर्गुण्य गुणातीत अवस्था में, लेकिन भगवान के सौंदर्य और उनके दया के गुण को सुन करके इतना आकृष्ट हुए कि अपने से आकर के श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तो ये भक्ति का गुण है कि मोक्ष का सुख है उसके आगे फीका हो जाता है, छोटा हो जाता है, और इसको कहते मोक्ष लघुताकृत। इस विषय में एक श्लोक उद्धृत किए हैं कि मनाग एव प्ररूढायाम हृदय भगवद रतौ पुरुषार्थास्तु चत्वार त्रिणायन्ते समन्ततः। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भाव भक्ति या रति स्तर का भक्ति दोनों एक है। भाव और रति ये समान अर्थ के शब्द हैं। कहीं कहीं रति शब्द आएगा तो सीधे भाव से उसका कोई अंतर नहीं है। एक ही भक्ति के लिए कहीं कहीं रति शब्द आता है और कहीं कहीं भाव शब्द आता है। इस श्लोक में रति आया है। मनाग एव प्ररूढायाम हृदये भगवद् रतौ पुरुषार्थास्तु चत्वार त्रिणायन्ते समन्ततः। अरे कि हृदय में थोड़ा सा भक्ति प्रस्फुटित हो जाए। शब्द बहुत सावधानी पूर्वक रखा गया है, ये नहीं कह रहे कि जन्म ले ले, क्योंकि भाव भक्ति कहीं बाहर से नहीं आती है। प्ररूढ़ायाम ये थोड़ा रूढ़ हो जाए, भक्ति रूढ़ हो जाए या अंकुरित हो जाए, तो चारों पुरुषार्थ वैसे तुच्छ होते हैं जैसे मार्ग में पड़ा हुआ घास है। आप लोग आ रहे हैं तो कोई सूखा हुआ घास है उसका कुछ ख्याल रख रहे हैं? तो जैसे उसमें है बुद्धि है, वैसे भक्ति यदि भाव स्तर पर पहुंचने लगे, उस स्तर को अभी प्राप्त करे, तो मोक्ष के प्रति है बुद्धि हो जाती है। ये उसका गुण है। और मोक्ष एक दूसरे अर्थ में भी है भक्ति के आगे, यानी कि हरि भक्तिर महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धयः भुक्तयश्चाद्भुतास्तस्या चेटिकावाद अनुव्रता। जैसे रानी है तो रानी के पीछे पीछे दासी चलती है। रानी जिधर जाएगी तो उसके जो चेटी है दासी है तो वैसे ही पीछे पीछे जाएगी। तो ठीक है, भक्ति और मुक्ति या भुक्ति में यही संबंध है। ये भक्ति रानी के समान है और मुक्ति दासी के समान है। और आप लोगों के परीक्षा में एक प्रश्न हो सकता है कि रानी और दासी के उदाहरण को, दृष्टांत को या उपमा को स्पष्ट कीजिए। तो समझना चाहिए किस परिपेक्ष में उदाहरण दिया गया। ये मोक्ष को लघु बतलाने के लिए, और जैसे रानी के पीछे पीछे दासी चलती है वैसे ही भक्ति के पीछे पीछे भुक्ति या मुक्ति चलती है। तो यह भक्ति का एक गुण है, मोक्ष लघुताकृत। और एक गुण है सुदुर्लभा। सुदुर्लभा का क्या अर्थ है? जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, दुर्लभ। तो इसको दुर्लभ नहीं कह रहे हैं, जिसको प्राप्त करना कठिन है उसको कहा जाएगा दुर्लभ। तो यहां दुर्लभ नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुदुर्लभ। जिसको प्राप्त करना कठिन ही नहीं बहुत कठिन है, और उसको कहा जाएगा सुदुर्लभा। और इसके लिए कह रहे हैं कि साधनई अनासंगई अलभ्या सुचिरादपि। जब तक साधन में आसक्ति नहीं है, या व्यक्ति साधना करते करते भक्ति के आसक्ति लेवल तक नहीं चला जाता, तो सुचिरादपि बहुत दिन पर भी भक्ति करने से यह अलभ्या अप्राप्य है। बहुत दिन भक्ति करेंगे फिर भी भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। यत्न आग्रह बिना न जन्माय रती। जब तक साधन में बहुत यत्न है नहीं है, आग्रह नहीं है, तब तक भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो साधनौ घई, एक साधन नहीं कई एक साधन कर रहे हैं, लेकिन जब तक साधन में आसक्ति नहीं है, निष्ठा नहीं है, तब तक बहुत दिन भी साधन करने पर भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और हरिणा चाश्व दे येते द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। और भगवान भी जल्दी नहीं देते हैं। तो इस प्रकार ये दो तरह से सुदुर्लभा है, भक्ति दो तरह से सुदुर्लभा है। तो दो तरह से कैसे? कि बिना आसक्ति के, बिना निष्ठा के चीर काल तक साधन करने पर भी भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। और जो साधन में लगा हुआ है उसको भी भगवान जल्दी भाव भक्ति नहीं देते। वो भगवान भी नहीं देते हैं और साधन से भी नहीं प्राप्त होता है, तो इसलिए इसको सुदुर्लभा कहा गया। इसके लिए तंत्र शास्त्र से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि ज्ञानतः सुलभा मुक्ति। मैं कि किसी को मुक्ति की चाह है तो ज्ञान का अनुशीलन करेगा तो मुक्ति सुलभ है। और भुक्ति जज्ञादि पुण्यतः, और स्वर्ग इत्यादि का भोग चाह रहा है तो यज्ञ करेगा उससे भोग मिल जाएगा। सेजन साधन साहस्रैर हरि भक्ति सुदुर्लभा। लेकिन जो भाव भक्ति है वो हजारों हजार साधन करने पर भी दुर्लभ है। वो भाव भक्ति दुर्लभ है, इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये भक्ति का गुण है कि इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है, इसी से इसको सुदुर्लभा कहा गया। इसके लिए श्रीमद् भागवतम से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि राजन पति गुरुरलम भवताम जदूनाम दैवम प्रियः कुलपति क्वच किं करो वह अस्तेव मंग भजताम भगवान मुकुंदो मुक्तिम ददाति कर हिचित स्मन भक्ति जोगम। युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि कृष्ण से आप लोगों का बहुत घनिष्ठ संबंध है, वे स्वामी हैं, गुरु हैं। अरे यहाँ तक कि आप लोगों के सेवक भी बन जाते हैं, दूत बन जाते हैं, ये सब ठीक है, इसको मैं अंगीकार करता हूँ। लेकिन भगवान की विशेषता है कि भजन करने वालों को मुक्तिम ददाती, मुक्ति तो दे देते हैं लेकिन करहिचित न भक्ति जोगम। लेकिन भक्ति योग नहीं देते। ऐसा अनुवाद नहीं किया जाएगा कि कभी भी नहीं देते, उसको सुदुर्लभा नहीं कहा जाएगा, उसको तो अलभ्या कह दिया जाएगा। कर ही चित न ददाते, कभी नहीं देते हैं तो ध्वनित है, कभी कभी देते भी हैं। तो साधन में बहुत निष्ठा होने से तब भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, और भगवान भी बहुत विचार करके भाव भक्ति प्रदान करते। चैतन्य चरितामृत में एक प्यार है, मध्य लीला की आदि लीला होने चाहिए। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्ति ना देन राखें लुकाइया। मुक्ति भगवान बहुत आसानी से दे देते, भोग भी बहुत आसानी से दे देते, लेकिन भाव भक्ति को, प्रेम भक्ति को छिपा करके रखते हैं। तो इस प्यार का आशय यह है कि भगवान पहले टेस्ट लेते हैं, भोग दे करके या मोक्ष दे करके, और उसी से यदि साधक संतुष्ट हो गया तो प्रेम भक्ति नहीं देंगे। लेकिन अपना मुक्ति दिए जा रहे हैं, भोग दिए जा रहे हैं, और फिर भी उसको संतोष नहीं है, फिर भी ललायित है भक्ति के लिए, तब उसको देते हैं। और भाव भक्ति के, प्रेम भक्ति की विशेषता है कि भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसा अनुवाद करते हैं कि लगता है कि अपने अधीनता के भय से भगवान नहीं देते, यह आशय नहीं है। भगवान को अपने भक्त के अधीन रहना वो सबसे सुखद चीज है। एक महीना तक बांध करके रखते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता तो क्यों भक्त लोग बांध करके रखते हैं? भगवान तो दिखाना चाहते हैं, उनको इतना आनंद आता है कि दुनिया को दिखाते हैं कि भगवान के भक्तों के अधीन है। चतुर्थ श्लोक में निज वशगत्वम अयम, अपने अधीनता का वे प्रदर्शन करते हैं, उनको सुख है, लेकिन बहुत बड़ा चीज है इसलिए अधिकारी का विचार करते हैं, सबको नहीं दे देते। यदि भुक्ति और मुक्ति से ही उनको छुट्टी मिल गई तो भक्ति वैसे के वैसे रखे रहेंगे। वो मुक्ति देने में भगवान तो बहुत उदार है। मुक्ति भी बहुत बड़ी चीज है। आप लोग मुचकुंद महाराज की कथा जानते हैं, वे जा करके देवताओं की सहायता किए और सहायता में भी सेनापति का पद संभाले। जब उनके सेनापति वापस आ गए कार्तिकेय जी, तो वो लोग कहे कि राजन विरमतात कृच्छ्रात, ये बड़ा युद्ध का कठिन समय है, आप विरत हो जाए, वरम विड़िश्व भद्रम ते, आपका मंगल हो, आप कोई भी वर मांग सकते हैं, शर्त डाले रीते कैवल्य मद्यन, एक चीज मत मांगिएगा, मुक्ति मत मांगिएगा। और वो पूछ सकते कहा है ये क्यों कंडीशन डाल रहे हैं, ये ऐसा शर्त क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि एक एवेश्वर तस्य भगवान विष्णु रव्य, उसके नियंता तो केवल भगवान है। अब इन शब्दों की व्याख्या करने में तो भागवत क्लास हो जाएगा। भगवान अकेले मुक्ति का अधिकार रखते हैं, सारे देवता लोग जिसकी जो व्यक्ति सहायता किया उसको मुक्ति नहीं दे सकते। लेकिन भगवान की स्थिति है, भगवान विष्णु रव्य, विष्णु कहने का अर्थ है कि सब जगह वे सुलभ है, कहीं से कोई मुक्ति ले सकता है। अरे सब जगह से मुक्ति लुटले लगेंगे तो स्टॉक ही खत्म हो जाएगा, यानी कि अव्ययम। कोई कोई समान है उदारता दिखाते हैं, स्टॉक खत्म हो जाता है। कूपन कभी कभी लोग बांटने लगते हैं, कई एक लोग तब तक 10 मिनट में जा खत्म। लेकिन भगवान के लिए शब्द दे रहे हैं, एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णु मतलब व्यापक है, कहीं से भी मुक्ति कोई प्राप्त कर सकता है। स्टॉक खत्म ना अव्यय, वहां कोई कमी नहीं है। अरे भगवान मुक्ति देने में इतना उदार हैं कि हस्ते न्यस्त नताप वर्ग मखिलो दारो किशोराकृति। प्रणाम करने वाले के लिए मुक्ति हाथ में रखते हैं, प्रणाम किया तुरंत हस्ते न्यस्त। और इतना ही नहीं, एक दूसरे ढंग से अर्थ किया जाए तो हस्ते न्यस्त नता अपवर्ग, जो भगवान के सरेंडर डिवोटी हैं, हस्ते न्यस्त नताप, जो नत नतमस्तक हैं, भगवान को समर्पित है, उनके हाथ में भी मुक्ति रख दिए, इतने उदार है। ये तुम भी दे सकते हो। अधिकार भगवान का ही है, लेकिन अपने समर्पित भक्तों के हाथ में भी दे दिए कि किसी को थोड़ा भी विलंब ना हो, तुम लोग भी दे सकते हो। हम इस बात का अनुभव ऐसे किए हैं, जब हाई स्कूल का रिजल्ट आता था उस समय एडमिशन के लिए टीसी लेना होता था। अब टीसी पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर चाहिए, हम लोगों के जो प्रिंसिपल थे खाली टीसी पर साइन करके चले जाते थे, इस अर्थ में कि कोई लड़का अब एडमिशन लेना है देर ना हो, क्लर्क नाम डालेगा एड्रेस डालेगा दे देगा। कई एक मैनेजर लोग हैं कि अपने अधीनस्थ को खाली चेक पर साइन करके दे देते, अब अमाउंट भरते वो दे देता है, चेक का अधिकार वो अधीनस्थ को नहीं है, वो साइनर नहीं है ना। लेकिन कितने लोग हैं ना कि एकदम खाली चेक पर साइन कर देते हैं, इसलिए कि हमारे ऑफिस वालों को कोई कठिनाई ना। तो भगवान वैसे उदारता दिखाते हैं मुक्ति देने में। और भोग तो पीछे पीछे भक्ति के लगा ही हुआ है, लेकिन जो इससे संतुष्ट हो गया तो उसको भाव भक्ति नहीं देते। देखिए इस विषय में बहुत रेलेवेंट लगता है, प्रासंगिक लगता है, इसलिए हम एक घटना सुना रहे हैं। ब्रज के एक प्रसिद्ध संत हैं, एक दिन अपनी बात सुना रहे थे कि मैं भी समाज में जाता था गान करने के लिए, या ब्रज का अपना एक स्टाइल है गाने का, वो गाने पर अब जिसका गाना अच्छा होता है नहीं भी होता है फिर भी कुछ लोग पैसा वैसा देने लगते हैं। मैंने कि हम भी गाते थे तो लोग पैसा दे देते थे, हम गोसाई को अपना दे देते थे, गोसाई कुछ दिन तो बड़ा खुश हुआ, हमारे बगल में ही आकर के बैठता था। लेकिन अब कोई एक दिन वही लिया तो वो भी कहने लगा कि बाबा आपका भी मंदिर है, आप क्यों नहीं ले जाते। वही आपके रमेश बाबा की घटना है, बाबा कह रहे थे कि देखो मैं मूर्ख नहीं था कि पैसा दूसरे को दे देता था, लेकिन मैं जानता था कि इसको मैं लेने लगूंगा तो उच्चतर लाभ से वंचित रह जाऊंगा, तो हम अपने स्वार्थ में पैसा को दूसरे तरफ ठेल देते थे, हमारा बड़ा स्वार्थ था। और चैतन्य चरितामृत में कि कृष्ण यदि छूटे भक्त मुक्ति भुक्ति दिया, भोग और मोक्ष देने से छुट्टी मिल जाता है तो उसको रखे रहते हैं, छिपा करके रखते हैं, और उससे छुट्टी नहीं मिली ना, हमको यह पसंद नहीं है, तब भगवान देते हैं। तो इस अर्थ में सुदुर्लभा। यहाँ ब्रह्मचारियों का क्लास लेते रहते हैं जनार्दन महाराज, कई एक बार इस बात को कहते हैं, देखो तुम लोग फैसिलिटी में फंसोगे तो हायर लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकोगे। तो वास्तव में भाव भक्ति के प्राप्ति के लिए थोड़ा ये सब भोगों का इग्नोर करना पड़ता है इसको। जो हो, यह सिद्धांत यही दिया जा रहा है कि भक्ति सुदुर्लभा, इसको प्राप्त करना कठिन है। जब तक साधना में यत्न आग्रह नहीं होगा, रुचि नहीं उत्पन्न होगी, आसक्ति का लेवल नहीं प्राप्त करेंगे, आसक्ति का स्तर जब तक नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। यह हुआ सुदुर्लभा। अर्थ समझ में आ रहा है, भक्ति दो तरह से सुदुर्लभा है, प्राप्त करना कठिन। एक तो साधन में आसक्ति नहीं हुई तो दीर्घ काल तक साधन करने पर भी भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, और ऐसे व्यक्ति को भगवान भी जल्दी भाव भक्ति नहीं देते। इस तरह से ये दो तरह से सुदुर्लभा है। तो चार गुण हो गया, बाकी कितना रहा?
दो।
कौन कौन? सांद्रानंद विशेष आत्मा। ये शब्द पर थोड़ा विचार कीजिए। सांद्र मतलब गाढ़, आनंद समझ रहे हैं, और आत्मा मतलब स्वरूप, और गाढ़ आनंद स्वरूप है। एक चीज समझना चाहिए कि भक्ति भगवान के अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, तो स्वाभाविक ही आनंदमय है, लेकिन प्रेम स्तर का जो भक्ति है तो गाढ़ आनंद स्वरूप हो जाता है। तो गाढ़ आनंद स्वरूप कहना चाहिए, विशेष क्यों कह रहे हैं? अरे गाढ़ आनंद कैसा आनंद कुछ बतलाइए। तो रूप गोस्वामी को ऐसा लग रहा है कि ना, अब कैसा है इसको नहीं मैं बतला सकता, अब इतना ही है कि वो विशेष है। अरे भाई, विशेष किस अर्थ में, क्यों नहीं बतला रहे? आप लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, वो चैतन्य महाप्रभु की उक्ति है कि कही बार योग्य न तथापि बाउलक कही लेना केवा पति आए। अरे जो प्रेम का स्वरूप है जो कहने लायक है ही नहीं, इसकी अभिव्यक्ति किया ही नहीं जा सकता, लेकिन कोई पागल बन करके सेन व्यक्ति मने सामान्य व्यक्ति तो प्रेम का निरूपण करेगा ही नहीं, अब कोई पागल उसका वर्णन करने भी लगे तो उस पर विश्वास कौन करेगा। कह रहे हैं कि यही मत दिने दिने स्वरूप रामानंद सने निज भाव करे न विदित। चैतन्य महाप्रभु तो कहे कि हम तो पागल ही हो ही गए हैं, अब विश्वास करो या नहीं, हम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाह्य विश्व जाला है, भीतर आनंदमय कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित विशेष आत्मा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें सुख और दुख दोनों का मिश्रण है। जो दुख है वह अभी सुख स्वरूप ही है। कोई कोई चीज है देखने में विपरीत लगता है, लेकिन वो एक जैसा ही है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दुख में रो रहा है, अश्रु गिर रहे हैं, तो कष्ट का अनुभव कर रहा है, रो रहा है, लेकिन कभी कभी वही देखा जाता है कि रो रहा है, कष्ट में ही रो रहा है, लेकिन फिर भी परम सुख की अनुभूति होती है। अब पता नहीं आप लोगों में कितने लोगों का अनुभव है, ये तो वृंदावन की भूमि है। अब वृंदावन में भी भक्तों के मन में कभी कभी विषाद आ जाता है। एक भक्त एक दिन पूछ रहे थे विषाद का अर्थ, अपने प्रारब्ध पर विचार करके लक्ष्य के अप्राप्ति से जो विकलता होती है, जो हम चाह रहे हैं वो प्राप्त नहीं हो रहा है, और उससे जो विकलता या कोई एक ढंग से विकलता होती उसको विषाद कहते हैं। और कभी कभी व्यक्ति विकल हो करके कब हमारा अवस्तर आएगा कि हम कब भगवान का अनुभव करेंगे, वो विकल होकर के रोता ही है, लेकिन रो लिया या रोते समय भी एक सुख की अनुभूति होती है। किसी वृक्ष के नीचे वृक्ष से प्रार्थना करके रो रहा है, लेकिन फिर भी उसको सुख की अनुभूति होती है। बल्कि अब मन में स्पृहा होती है कि ऐसा ही रुलाई रोज आवे। परम पूज्य लोकनाथ महाराज कहते हैं कि अरे रोना नहीं आता है तो कम से कम इस बात पर रो कि रुलाई नहीं आ रही है। तो ये प्रेम को कह रहे हैं कि सांद्रानंद विशेष आत्मा, ये गाढ़ आनंद स्वरूप है लेकिन विशेष इसका स्वरूप है इस अर्थ में कि बाह्य विश्व ज्वाला है भीतर आनंदमय कृष्ण प्रेमर अद्भुत चरित। बाहर से तो लगता है कि विष का लहर आ रहा है, ज्वाला फूक रहा है और भीतर आनंदमय है। तो ये अद्भुत चरित्र है, इस अर्थ में इसको विशेष आत्मा कहते हैं। यही प्रेम आस्वादन तब तक इच्छु चरवण मुख ज्वले ना जायत्यजन। उदाहरण दे रहे हैं कि प्रेम का स्वभाव वैसे समझ सकते हैं कि जैसे तप्त इच्छु चरवण, इच्छु मतलब सुगर के गन्ना। अब तो ब्रज में भी ये सिस्टम खत्म हो गया, पहले गुड़ बनाते थे कराह में, तो सब है स्वावलंबी व्यवस्था थी। ऊख का जो डंठल है रस निकालने के बाद चेपुआ उसको सुखा करके आग में डालते थे, अब उससे रस को गाढ़ा करते थे। लेकिन आग को कंट्रोल करने के लिए एक इक्षु दंड मैंने एक गन्ना लिए और उसी से कंट्रोल करते थे, चलाते थे। तो वे बहुत देर तक आग में रहने से गर्म हो जाता है और गर्म होने से उसका रस भी मीठा हो जाता है। अब ये तो उनका गुड़ खत्म हुआ उसको छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों का उस पर ध्यान रहता है। अब वे उसको तुरंत ले लेते हैं, वो तो फेंक देते हैं या उनका काम खत्म हुआ तो वो चूसने लगते हैं। ये बाबा को अनुभव होगा इसका, हम भी खूब चूसे लेकिन मुख ज्वाले अब बहुत देर तक आग में है तो गर्म हो गया है, लेकिन दूसरे ऊख से उसका रस और गाढ़ हो गया है तो मीठा लगता है। तो मुख जलता है बच्चों का लेकिन छोड़ते नहीं है, उसको चूसते रहते हैं। तो प्रेम का कुछ ऐसा स्वरूप है। अब रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सही प्रेम जार मने तार विक्रम सही जाने विषा मित्र एकत्र मिलन। कि ये तो प्रेम जिसके हृदय में उदित होता है वही इसके प्रभाव को जानता है। विष और अमृत का एक जगह मिश्रण है, इसी अर्थ में इसको विशेष आत्मा कह रहे हैं। आप श्लोक में रूप गोस्वामी इसको व्यक्त किए हैं, पीड़ा भी नवकाल कूट कटुता गर्वस्य निर्वासन। अरे कि कष्ट इतना होता है प्रेम में कि करैत के बच्चे का विष भी फीका है। दो विषैले सांप भारत में प्रसिद्ध हैं, एक को करैत कहते हैं एक को गेहुअन कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। गेहुअन जितना उम्र बढ़ेगा उतना विषैला होता जाएगा और करैत जितना छोटा है उतना अधिक विषैला। तो पीड़ा भी नवकाल कूट कटुता, नवकाल कूट एकदम करैत का बच्चा है और उसका जैसा लहर आएगा वैसे प्रेम में लहर आता है, वैसे कष्ट होता है। और निस्संदेह मुदाम सुधा मधुरम अहंकार संकोचन, और जो झरझर झरझर आनंद गिर रहा है वो अमृत का अहंकार भी फीका। अब अमृत वैसा आनंद नहीं दे सकता। प्रेमा सुंदरी नंद नंदन पर जागृत तेजस्यांतर। पौर्णमासी जी कह रही नंदी मुखी से, ये नाटक है ना कौन विदग्ध माधव, उसमें हे सुंदरी हे नंदी मुखी, ये तो प्रेम जिसके हृदय में उदित होता है तो ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्र मधुरा स्तेनैव विक्रांत। तो इसका जो विरोधी प्रभाव है मतलब विष और अमृत का, तो वही व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है, इसको शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता। तो प्रेम गाढ़ आनंद स्वरूप है, लेकिन अब केवल आनंद नहीं है, इसमें ज्वाला भी, वह भी आनंद स्वरूप है, ये समझना चाहिए। इसी अर्थ में इसको विशेष आत्मा कर। अब इसके विषय में श्लोक कई एक उद्धृत किया गया है, कहाँ कहाँ पढ़ना, इधर उधर कह रहे हैं कि ब्रह्मानंदो भवेत चेत परार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंद का आनंद बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन कोई परार्ध गुणीकृत, ब्रह्मा के दिन, ब्रह्मा के आयु दो परार्ध होता है, तो मतलब आधा आयु कह सकते हैं, वो उतने दिन तक कोई समाधि में है, ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा है, लेकिन भक्ति का एक परमाणु की तुलना उससे नहीं की जा सकती। प्रेमा भक्ति में जो आनंद है, वो इसके एक अणु को समुद्र है, ये प्रेमा भक्ति का आनंद समुद्र है, तो उसके एक कणिका की तुलना ब्रह्मानंद के, ब्रह्मा के आयु के समान समाधि में भी अनुभव की बराबरी नहीं कर सकते। मतलब एक तरफ एक व्यक्ति है कि ब्रह्मानंद का अनुभव किया, ब्रह्मा के आयु के बराबर समाधि में, समाधि लगा करके, तो उसको भी सुख अनुभव हो रहा है, लेकिन जो प्रेम स्तर की भक्ति है, तो उस सुख के एक परमाणु की तुलना उस ब्रह्मानंद से नहीं की जा सकती। श्रीमद् भागवतम से श्लोक के टीका एक लिखे हैं श्रीधर स्वामी, तो वे कहते हैं त्वत कथामृत पाथो दो विहरंतो महामुद, कि जो आपकी कथा रूप समुद्र में आनंद कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो कुर्वन्ति कृतना केचित चतुर्वर्गम त्रिणोपम, और कोई कोई ऐसे हैं कि चतुर्वर्ग को, मतलब अर्थ धर्म काम मोक्ष को, त्रिणोपम एकदम घास के समान उसको समझते है। मूल श्लोक है दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवात तनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमण। श्रुतियां कह रही हैं भगवान से, भगवान को जगाते हुए, कि दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवात तनो, आपके तत्व को जानना बहुत कठिन है, तो निगमाय उसी की जानकारी देने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं, और चरित महामृताम दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवात तनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमण, और जो आपके लीला रूप समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं, तो परिश्रमण दो अर्थ में, एक अर्थ है कि उनका सब थकान दूर हो जाता है, ये संसार का जो मार्ग है तो इसमें व्यक्ति थक चुका है, लेकिन अब भगवान के कथा रूप अमृत में जो अवगाहन कर रहा है, उस समुद्र में अवगाहन कर रहा है, तो परिश्रमण है, उसका सब थकान दूर हो जाता है, और न परिलसंत केचिद अपवर्ग मपिस्वरते, यद्यपि आप मुक्ति देने में समर्थ हैं, ईश्वर हैं, समर्थ हैं, लेकिन केचित न परिलसन्ति, कोई कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि मोक्ष की भी कामना नहीं करते हैं। अरे मोक्ष की कामना करें या न करें, ये भोग की कामना करें या न करें, जो उनके पास है उसका भोग करते हैं, करें कि ना, वो परमहंस विशिष्ट गृह, आपके भक्तों के संग से उनके जो सुख सुविधाएं वह भी छूट गया, तो वह भी छूट जाता है, और वे किसी चीज की कामना नहीं करते, उसी में इतना आनंद है कि क्यों दूसरे चीज की कामना करेंगे। या दूसरे ढंग से अर्थ किया गया है कि आपके चरित्र रूप समुद्र के अमृत में परिश्रमणा, अब उसी के परिशीलन में वो रात दिन लगे रहते हैं, उसी में वे इतना थक जाते हैं कि न परिलसंत के चिद अपवर्गम, वे मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। और भक्तों के संग से और सब से छूट ही गया। अब क्षमा कीजिएगा, उदाहरण भद्दा है, लेकिन यही उदाहरण दिया गया, आचार्य की वाणी है इसलिए हमको कहने में कोई संकोच नहीं है। कभी कभी देखा जाता है कि कोई बहुत अधिक स्त्री लंपट है, बहुत स्त्री में आसक्त है, स्त्री का भोग करता है, तो एकदम वो थक जाता है, एकदम कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको शक्ति आई तो फिर भोग में ही लग जाता है। तो उसी प्रकार अब भगवान के लीला कथा के अवगाहन में जो लगा है परिवर्त परिश्रमणा, उसको पढ़ने में सुनने में एकदम थके रहते हैं, परिश्रमण बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन न परिलसंत केचित अपवर्गम, लेकिन दूसरे चीज की इच्छा नहीं करते, क्योंकि उसमें ऐसा सुख का अनुभव करते हैं कि दूसरे चीज की इच्छा होती नहीं है। श्रीमद् भागवतम के श्लोक का ये टीका श्रीधर स्वामी का उद्धृत किया गया है कि जो भगवान के कथा रूप अमृत के सुख को प्राप्त कर लिए, प्रेमा भक्ति के सुख को प्राप्त कर लिए, तो चारों पुरुषार्थ घास के समान होते हैं। यह है सांद्रानंद विशेष आत्मा। और भक्ति का एक गुण और है, वो कौन? श्री कृष्णाकर्षणी, आकर्षण, आकर्षणी जो खींचे। पहले हम कहे कि सब स्त्रीलिंग में भक्ति के विशेषण है जो श्री कृष्ण को आकर्षित कर ले, उसको कहा जाएगा श्री कृष्णाकर्षणी। तो भाई कृष्ण को आकर्षित करे तो शब्द होना चाहिए कृष्णाकर्षणी, लेकिन शब्द क्या दिए हैं? श्री कृष्णाकर्षणी। इसका अर्थ है कि भक्ति केवल भगवान को ही नहीं खींचती है, भगवान के परिकरों को भी खींच लेती है, परिकर सहित भगवान को खींच लेती है, इस अर्थ में श्री कृष्णाकर्षणी। इसके लिए उदाहरण दिया गया है श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध में नारद जी कथा सुना रहे महाराज युधिष्ठिर को। प्रहलाद महाराज की कथा नारद जी सुनाए हैं। जब वे सुनाए कि प्रहलाद महाराज को भगवान अपने गोद में लेकर के चाटने लगे, अब इसको सुन करके महाराज युधिष्ठिर के मन में आया कि वो भाग्य तो प्रहलाद महाराज का, अब उनके भाग्य को देख करके थोड़ा अपने तरफ उनको निराशा हुई कि हमको ऐसा कभी भाग्य नहीं मिला। तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी कह रहे हैं कि जूयम निर्लोके बतभूरी भागा लोकम पुनाना मुनयो भी यंती, कहने कि इस संसार में वास्तव में तो आप लोग भाग्यशाली हैं। जूयम निर्लोके बत भूरी भागा, आप लोग भाग्यशाली हैं। क्यों? लोकम पुनाना मुनयो भी यंती, क्योंकि सारे संसार को पवित्र करने वाले मुनि लोग आपके घर में आते हैं। मुनि लोग क्यों घर में आते हैं? क्योंकि गूढ़म परम ब्रह्म, क्योंकि भगवान जो छिप करके अवतार लिए हैं, जो पर ब्रह्म है, तो वही आपके घर में रह रहा है, तो इसलिए मुनि लोग भी आ जाते हैं। तो इस श्लोक में देख रहे हैं ना कि मुनि लोग भी युधिष्ठिर महाराज के यहाँ आ रहे और भगवान भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज के भक्ति से। और युधिष्ठिर महाराज के इतने उन्नत भक्ति थे कि उससे भगवान के परिकर भी आकृष्ट हो रहे हैं और भगवान भी आकृष्ट हो रहे हैं। और इसको कहते हैं श्री कृष्णाकर्षणी। कह रहे हैं कि कृत्वा हरिम प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम भक्ति बसी करोति श्री कृष्णाकर्षणी मता। कृत्वा हरिम प्रेम भाजम, भगवान को प्रेम का विषय बना करके और प्रिय वर्ग समन्वितम, केवल भगवान को ही नहीं भगवान के जो प्रिय जन है उनको भी भक्ति बसी करोती थी, भक्ति अपने बस में कर लेती है, इसीलिए इसको श्री कृष्णाकर्षणी कहा गया। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे रथ यात्रा का प्रसंग, पहले तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के ऐश्वर्य परक श्लोक बहुत बोले, लेकिन उनका भाव बदल गया। भाव बदला तो अब श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोलने लगे, जिस श्लोक को गोपियों ने कुरुक्षेत्र में बोली है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हमसे भूल हो गई, मैं लाया नहीं चैतन्य चरितामृत, लेकिन तो बंगला में निकलेगा ना, हिंदी में नहीं निकलेगा, इंग्लिश तो होगा नहीं, देख निकाल तो मध्य लीला का 13वां अध्याय कुछ तो होगा, मध्य लीला 13वां अध्याय बीच में है। और एक श्लोक गोपियां बोली हैं कुरुक्षेत्र में, आहुश्चते नलिन नाभ पदा रविंदम जोगेश्वर हृदय विचिन्त मगाध बोधय संसार कूप पतितो तरणावलंबम गेहम जुषामपि मनस उदियात सदान। गोपियां श्री कृष्ण से कह रही हैं कि हे नलिन नाभ ते पदा रविंदम, हे नलिन नाभ अपने चरण कमल को हमारे मन में उदित कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि आपका चरण कमल हमारे मन में उदित होता रहे। इस श्लोक का दो स्तर पर अर्थ है, एक को यथाश्रुत अर्थ कहते हैं, यथाश्रुत का अर्थ है कि जैसे सुनने में लग रहा है। तो गोपियां कह रही हैं कि हमारे गेहम जुसामपि, हम यदि घर गृहस्थी में लग जाएं, घर गृहस्थी के काम में लग जाएं, फिर भी हमारे मन में आपका चरण कमल स्फुरित होता रहे, उसका स्मरण हमें होता रहे। तो चरण कमल के विषय में कह रही हैं कि जोगेश्वर हृदय विचिन्त मगाध बोध है, जिस चरण कमल का चिंतन बड़े बड़े जोगेश्वर लोग अपने हृदय में करते हैं। और संसार कूप पतितो तरणावलंबम, जो व्यक्ति जन्म मृत्यु रूप इस संसार में पड़ गया है तो इससे निकलने का एकमात्र अवलंबन है। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि गोपियां श्री कृष्ण से मिली, कृष्ण उनको उपदेश दिए, तो उनका जो अज्ञान था मोह था वो खत्म हो गया, जीव कोशम उनका जो बंधन था वो समाप्त हो गया। और कह रही हैं कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, तो हम बहुत सुखी हैं, लेकिन हम तो अब अपने घर गृहस्थी में जाएंगे, तो कृपा ऐसे कीजिए कि आपका चरण कमल गेहम जुसामपि, हम घर गृहस्थी में पड़ जाएं फिर भी हमारे मन में स्फुरित होता रहे, इसका चिंतन होता रहे। और चरण कमल की विशेषता बतला रही हैं कि जोगेश्वर हृदय विचिन्त मगाध बोध है, जो बड़े ज्ञानी हैं जिनका ज्ञान अगाध है, वैसे जोगेश्वरों के द्वारा जो चरण कमल हृदय में चिंतित होता है, जो इसका चिंतन करते हैं हृदय में, और संसार कूप पतितो तरणावलंबम, जो व्यक्ति संसार रूप कुआं में गिर गया है तो उससे निकलने के लिए एकमात्र अवलंबन है। कुआं में कोई गिर जाए तो बिना अवलंबन का नहीं निकल सकता, कोई ना कोई अवलंबन चाहिए, चाहे रस्सी का अवलंबन हो, सीढ़ी का अवलंबन हो, पाइप का अवलंबन हो, समझ रहे हैं ना। कुआं में गिर गए तो बिना अवलंबन के, बिना सहारा का नहीं निकल सकते। वो कह रहे हैं कि संसार कूप में जो पड़े हैं, एकमात्र वही चरण अवलंबन है, वही हम गृहस्थी में भी पड़ जाए तो हमारे मन में स्फुरित होता रहे। वो हम लोगों के स्तर से बहुत ही ये अच्छा अर्थ है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसके वास्तविक अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई स्त्री कहे, आप लोगों में से कहे क्या, अरे आश्रम में तो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, तो एक ध्वनि है ना कि हम लोग उसमें नहीं जा सकते, ध्वनि है ना, तो ठीक गोपियों की यही ध्वनि है, अगाध बोध है जोगेश्वर है हृदय विचिंत्य, अरे जिनका ज्ञान अगाध है वे लोग हृदय में चिंतन करते हैं, मतलब हम लोगों के चिंतन का विषय नहीं है, हम लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु इस अर्थ का आस्वादन कर रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि अरे जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं वे लोग हृदय में चिंतन करके संतोष करते हैं, हम लोगों को हृदय में वो संतोष, चिंतन से संतोष नहीं होगा, जब तक प्रकट अपना चरण हमारे छाती पर नहीं रखेंगे तब तक हमको ये चिंतन करने से संतोष नहीं है। और संसार कूप पतितो तरणावलंबम, हम लोग मानती हैं, ये राधा रानी कह रही है, हम मानती हैं कि जो लोग संसार कूप में पड़े हैं तो उसे निकलने के लिए एकमात्र सहारा है, लेकिन हम लोगों की समस्या संसार कूप नहीं है, देह स्मृतिर नाही जार, संसार कूप कहा तार, अरे जिसको अपने देह का ये स्मरण नहीं उसको संसार क्या है। अब सब जानते हैं कि किसी का संसार हुआ देहात्म बुद्धि से ना, अब जिसको देह का स्मरण ही नहीं है तो उसका संसार क्या है। हम लोग इस संसार कूप से उद्धार नहीं चाहते, हम लोग तो विरह समुद्र में पड़े हुए हैं और इससे हमको पार लगाइए, ये काम है ये तिमिंगल के समान है, ये हमको निगल रहा है, हमारी समस्या दूसरी है। और जब तक आप वृंदावन नहीं चलेंगे तब तक हमको संतोष नहीं है, दूसरे के लिए मन हृदय होगा लेकिन हम लोगों का मन तो वृंदावन है। इस अर्थ में कि जैसे हृदय और मन को अलग नहीं कर सकते, वैसे हमको और वृंदावन को अलग नहीं किया जा सकता। गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, कृष्ण पर आक्षेप भी कर रही हैं कि कैसे आप भूल गए, उस समय क्या क्या कह रहे थे, अरे रास लीला को कैसे भूल गए, ये सब भूल भी गए, हम लोग तो अपने दुख को भी सह भी जाती हैं, लेकिन जसोदा के दुख को देख करके हृदय विदीर्ण होने लगता है। बहुत आश्चर्य की बात है कि आप जसोदा को कैसे भूल गए, अरे कम से कम उसके लिए तो जाना चाहिए। और गोपियां कह रही हैं कि हम लोगों के ये दुर्भाग्य ही है कि आप भूल गए। जब ऐसे प्रार्थना वे करने लगी और कृष्ण का तो मन बिल्कुल व्याकुलित हो गया और कृष्ण कहने लगे कि तुम लोग हमारी समस्या नहीं समझ रहे हो, तुम लोगों को लग रहा है कि वहां विवाह कर लिए राज्य पा गए, हमें वहां थोड़ी भी रुचि नहीं, हम तो उन लोगों के संतोष के लिए वैसा व्यवहार कर लेता, हम तो रात दिन तुम लोगों के विरह में जल रहा हूं, एक एक ब्रजवासी हमको प्रिय है, लेकिन उसमें भी गोपियां हमारे प्राण के समान है। और राधा रानी से कह रहे हैं कृष्ण कि तुम तो प्राण के भी प्राण हो, लेकिन हम क्या करें, हमारा दुर्दैव है, हमारा भाग्य इतना खराब है, दुर्दैव इतना प्रबल है कि ब्रज से बाहर रखा है। और कह रहे हैं कि तुम लोगों के हित के लिए ही बाहर है, ब्रज के हित के लिए। सच्चा प्रेमी तो उसी को माना जाता है जो परोक्ष में भी वो सौहार्द रखे, हित करना चाहे। तो जो सच्चे प्रेमी होते हैं तो विरह में प्राण को नहीं धारण करते। शास्त्र का वचन सत्य है कि सच्चा प्रेम है तो विरह होगा ही नहीं, और विरह कदाचित हो गया तो प्राण नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी हम जीवित हैं तो तुम लोग दोष बुद्धि मत करो। हम जानते हैं, हम तो अपने जीवन को इसीलिए धारण किए हैं कि जब ही हम आत्महत्या करेंगे तो ये सुन करके तुम लोग आत्महत्या कर लोगी। तो तुम लोगों के जीवन के रक्षा के लिए मैं जीवन धारण किया। हम बहुत दुखित हैं, हम रात दिन जल रहे हैं, और ब्रज से बाहर भी इसलिए हैं कि कंस के वध के बाद उसके पक्ष वाले हम पर आक्रमण कर रहे हैं। तो यदि मैं ब्रज में आ जाऊं तो ब्रज पर आक्रमण करेंगे। तो दो चार शत्रु बाकी हैं, उनको मार करके मैं आ जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि हमारा भाग्य इतना खराब है, हमारा दुर्दैव इतना प्रबल है कि हमको ब्रज से इतना दिन बाहर रखा। लेकिन भगवान एक श्लोक बोले, मयूर भक्ति ही भूता न अमृत तत्वाय कल्पते, दिष्ट्या यदाशित मत स्नेहो भवती न मदापन। कह रहे हैं कि मयूर भक्ति भूता न, हमारी जो भक्ति है, मानो कृष्ण कहे कि दुर्दैव भगवान के अधीन है, कभी मिलाते हैं तो गोपियां कह सर भगवान तो आप हैं। जो भगवान को कह रहे हैं कि कभी मिलाते हैं बिछुड़ाते हैं तो आप ही हैं, तो कह रहे हैं कि अच्छा ये भी मान लेता हूं। तो मई भक्ति रे भूता नाम अमृतवाय कल्पते, तो मुझ में भक्ति है तो उससे सब दुख दूर हो जाता है। और दिष्ट्या यदाशित मत स्नेहो भवती न मदापन। और बहुत भाग्य की बात है कि हमारे प्रति स्नेह है तुम्हारे हृदय में, और उसका गुण है मदापन, हमको प्राप्त करा देता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हम अपने दुर्दैव के प्रबलता के चलते बहुत दिन बाहर रहा, लेकिन तुम्हारा प्रेम इतना प्रबल है कि बस प्रकट 10-20 दिन में प्रकट खींच लाएगा। वो भगवान यह व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे दुर्दैव से भी अधिक शक्ति तुम लोगों के स्नेह में है। दुर्दैव बाहर खींच रहा है लेकिन तुम लोगों का स्नेह ब्रज में खींच लेगा। तो हम केवल एक बात कहना चाहते हैं कि भगवान के प्रेमा भक्ति की विशेषता है मदापन, वो कृष्ण को खींच लेती है। यहाँ श्री कृष्ण शब्द देने का आशय लिखा गया है कि केवल भगवान को ही नहीं, भगवान के प्रिय लोगों को भी भक्ति खींच देती है। तो यह है श्री कृष्णाकर्षणी, वो भक्ति के 6 गुण। अब भक्ति का 3-3 बंटवारा कर दिए, लेकिन अभी भाव भक्ति क्या है, साधन भक्ति क्या है, प्रेम भक्ति क्या है, इसका वर्णन तो आगे किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि आगे इसका वर्णन किया जाएगा, लेकिन दो दो का एक पेयर है, एक एक भक्ति से संबंधित है। भक्ति बहुत अच्छी चीज है, बहुत गुण है, लेकिन भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? तो इस विषय में सिद्धांत दे रहे हैं कि स्वल्पापि रुचिरेवस्यात् भक्ति तत्वावबोधिका। भक्ति प्राप्ति के लिए थोड़ी सी रुचि चाहिए, स्वल्पापि। यदि थोड़ी भी रुचि है तो भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। रुचि का अर्थ है श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ है भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों में उत्मत्व बुद्धि। क्यों? भक्ति को प्रतिपादित करने वाले शास्त्र हैं वे अच्छे हैं, इस तरह की भावना को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का कई एक स्तर है, लेकिन स्वल्पा भी थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए। भक्ति के लिए केवल एक गुण चाहिए, थोड़ी सी श्रद्धा, और श्रद्धा का अर्थ है शास्त्र के शब्द में विश्वास। भक्ति निरूपक शास्त्र शब्द में विश्वास, और कह रहे हैं कि युक्तिस्तु केवला नैव यद अस्या प्रतिष्ठिता, केवल तर्क से व्यक्ति भक्ति को नहीं समझ सकता। थोड़ा ध्यान दीजिए, यह नहीं कह रहे हैं कि तर्क से युक्ति से कोई भक्ति को नहीं समझ सकता। क्या कह रहे हैं? केवल तर्क से नहीं समझ सकता, मतलब श्रद्धा है और तर्क है तो कोई बात नहीं, वो सहायक होगा, लेकिन श्रद्धा नहीं है, केवल तर्क से कोई समझना चाहे तो नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? कि तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। भाई अपने बुद्धि से कोई सिद्धांत स्थापित किए, और तब तक आपसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति आएगा, आपके सिद्धांत को बदल देगा, तो तर्क की प्रतिष्ठा नहीं, स्थिरता नहीं है। एक सिद्धांत स्थापित हुआ, प्रबल तर्क से उसको बदला जा सकता है, इसलिए केवल तर्क से, केवल युक्ति से कोई भक्ति को नहीं समझ सकता, और थोड़ी भी श्रद्धा है तो भक्ति को समझ सकता है। समझने का अर्थ है कि उसको प्राप्त कर सकता है। तो अब श्रद्धा के स्तर और तर्क से भक्ति को कैसे समझा जाता है, इसको हम लोग बाद में विचार करेंगे, लेकिन अब तक के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र योग्यता है थोड़ी सी श्रद्धा, स्वल्पापि, थोड़ी भी श्रद्धा है तो व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर सकता है, और कितना भी प्रबल तार्किक है तो केवल तर्क से भक्ति को नहीं समझ सकता। यह सिद्धांत है, क्योंकि तर्क कोई आज स्थापित किया उसको दूसरा कोई बुद्धिमान व्यक्ति बदल सकता है। और इस तरह से ये भक्ति रसामृत सिंधु का प्रथम लहरी समाप्त हुआ, लेकिन हम लोग दो दिन पीछे चल रहे हैं। जैसा इस बार का शेड्यूल दिए हैं, तो अब तक आप लोग क्या क्या इसमें सीखे सुने, पहले तो भक्ति रसामृत सिंधु, रस क्या है, भौतिक रस और भक्ति रस में अंतर क्या है, वो भक्ति रस से भक्ति रसामृत सिंधु के रचना का क्या उद्देश्य है, भक्ति के वैशिष्ट कहने के लिए भक्ति की परिभाषा दी गई, और बाद में भक्ति के 6 वैशिष्ट को कहा गया। अब भक्ति के अधिकारी का निरूपण कर रहे हैं कि थोड़ी सी श्रद्धा आवश्यक, 0 श्रद्धा से कोई भक्ति को नहीं स्वीकार कर सकता, और थोड़ी भी श्रद्धा है तो भक्ति का अधिकारी है। तो भक्ति के अधिकारी का क्या तारतम्य है, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। Gracias.